स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। भगवद गीता का प्रथम अध्याय चल रहा है और हमारी चेष्टा है कि आज गोवत्स द्वादशी की तिथि पर हम प्रथम अध्याय संपन्न करना चाहेंगे। आप लोगों की अनुमति हो और आप लोगों की प्रार्थना हो तो देखिए, हमने प्रथम अध्याय प्रारंभ किया था मेरे ख्याल से 1 साल पहले, 2 साल पहले, दो जितना भी सालों पहले। और प्रथम अध्याय हमको चर्चा करते हुए इतना समय बीत गया है तो इसके 2 कारण हैं। एक तो या तो हमें समझ में इतनी देरी से आता है, जो अर्जुन को 45 मिनट में, और प्रथम अध्याय तो कुछ 1-2 मिनट में हो गया होगा, पूरी गीता 45 मिनट में अर्जुन ने समझ ली। तो या तो क्योंकि हम कलयुग के निवासी हैं, मंद बुद्धि, मंद स्मृति, मंद आयु, सब कुछ मंद, ये कारण। और दूसरा कारण कि भगवान ने जो ये गीता सुनाई, इस गीता में ऐसा तत्व ज्ञान भगवान ने दिया कि यदि कोई भगवद गीता के 1 अध्याय का 1 श्लोक, 1 श्लोक का 1 वाक्य, 1 वाक्य का 1 शब्द, 1 शब्द का 1 अक्षर भी यदि समझने का प्रयास करे तो पूरा जीवन बीत सकता है। अर्थात इसमें भगवान की महानता दिखती है। तो हम लोग जो इतने समय से चर्चा कर रहे हैं, भगवान ने जो कहा पिछले 1-1.5 सालों से, तो भगवान कितने प्रसन्न हो रहे होंगे इसे देखकर कि मैंने जो ऐसे ही उठकर 45 मिनट में सुना दिया, नासिक के इस्कॉन मंदिर में ये लोग पिछले 1.5 साल से केवल 1 अध्याय चर्चा कर रहे हैं। ये स्वीकृति हुई शायद। जैसे कि यदि हम किसी को कुछ बात बोल देते हैं और वो व्यक्ति यदि सालों साल उसे याद रखे, उसकी चर्चा करता रहे, तो हमें भी लगता है भाई मैं तो पता नहीं कब बोला, बोल के भूल भी गया, और आप अभी तक उसे याद रखे हो। तो हो सकता है कि भगवान प्रसन्न हो रहे हो, या फिर भगवान ये सोच रहे हो इतना समय लग रहा है इन्हें समझने में, 1.5 साल लग गया। परंतु दोनों दृष्टिकोण से हम यदि भगवान की वाणी के संपर्क में रहेंगे तो हमारा उद्धार निश्चित है। तो आज हम अंतिम 2 श्लोक प्रथम अध्याय के लेंगे। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविग्नमानसः। क्लैरिटी थोड़ा कम है क्या? तो जो 45वां श्लोक है वो अर्जुन द्वारा, अर्जुन का कहा गया अंतिम श्लोक प्रथम अध्याय का, जिसमें अब अर्जुन बोल रहे हैं पूर्ण रूपेण। अर्जुन अब हताश, निराश, और उनके सामने कुछ भी सूझ नहीं रहा। अर्थात जिस विषाद में, जिस विषाद के समुद्र में अर्जुन डूबे हुए थे, अब सबसे गहराई में अब अर्जुन पहुंच गए अपने विषाद के समुद्र में या शोक सागर में। तो यहां पर 45वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि भगवान कृष्ण, यदि मैं अपने शस्त्रों को त्याग कर, यहां पर अपने शस्त्रों को त्याग कर उनके शस्त्रों के द्वारा यदि मैं मारा भी जाऊं, अशस्त्रम अर्थात मैं अशस्त्र हो जाऊं और शस्त्र पाणे उनके हाथों में शस्त्र और उनके हाथों द्वारा कौन धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र, अब यहां पर वो भीष्म द्रोण को भी नहीं उल्लेख कर रहे, धृतराष्ट्र के पुत्र, कि यहां तक उनका शोक बढ़ गया है कि धृतराष्ट्र के पुत्र जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया, हालांकि भीष्म द्रोण के विषय में तो भगवान श्री कृष्ण मान लेगी, हाँ वो तो हर समय पांडवों की तरफ में थे, परंतु यहां पर धृतराष्ट्र, धार्तर राष्ट्र रणे हन्यो स्तन में क्षेम तरम भवे, ये मेरे लिए केवल क्षेम नहीं, क्षेमतर नहीं, क्षेमतरम, नहीं समझ में, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो अब ऐसी स्थिति अर्जुन की, इतने हताश, तो भगवान भी और संजय यहां पर आश्चर्यचकित कि ये क्या हो रहा है, अर्जुन जैसे योद्धा इस प्रकार की हालत में कैसे दिख रहे हैं। तब फिर संजय वो कहते हैं धृतराष्ट्र से, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्य, इस प्रकार से अर्जुन ने जो ये अलग अलग प्रकार के तर्क वितर्क प्रस्तुत किए भगवान के सामने, रथ उपस्थ उपाविशत, रथ पे खड़े अर्जुन उपाविशत बैठ गए, और विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्न मानस, और फिर उनके सारे शस्त्रों को उन्होंने बगल में रख दिया, गांडी इत्यादि जो भी कुछ, और शोक संविग्न हुए शोक में मानस। तो सबसे पहले हम 45वां श्लोक अर्जुन द्वारा कहा गया कौन से महत्वपूर्ण विषय जिसके विषय में चर्चा हुई है। सबसे पहले अर्जुन जब ये बोल रहे हैं कि मैं अशस्त्र और वो शस्त्र पाणय, ये स्थिति भी ठीक मेरे लिए, तो अर्जुन अब तक इनकी अपेक्षा क्या बनी रही, इनको लगा कि अब यहां पर मानो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछे कि जो 12 वर्ष इतने सारे अस्त्र शस्त्र तुमने जमा किए वो किस लिए किए, ये ऐसा तो नहीं था कि तुमको एक दिन का नोटिस दिया गया कि चलो कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर आना है, एक दिन के नोटिस पे तो तुम्हें नहीं बुलाया गया, तुम सब जानते थे, तुमने सारे अलग अलग, यहां तक कि शिवजी से पशुपति अस्त्र लेकर आए, इंद्रलोक वहां से लेकर आए, क्या कुछ नहीं तुमने किया, और ये सब तैयारी इस युद्ध के तुम कर रहे थे। तो यदि भगवान ये प्रश्न अर्जुन को पूछें तो अर्जुन की अब तक अपेक्षा क्या थी, अर्जुन ने ये कहा कि भगवान हां मैं जानता था कि मुझे कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अपने शस्त्रों के साथ उपस्थित रहना है और इन सब के सामने। तो अर्जुन यहां पर भगवान को यह बता रहे हैं कि मेरी अपेक्षा यह थी कि दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, यहां तक द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये जब मुझे देखेंगे उन सब शस्त्रों के साथ तो हो सकता है कि ये पलायन कर जाए डर के मारे, परंतु अब तो शंख भी इन्होंने बजा दिए, अर्थात इन्होंने पूरा संकेत दे दिया कि हम पीछे नहीं हटने वाले। अर्जुन तब तक वो अपेक्षा रखे थे कि मुझे देखने के पश्चात और फिर भगवान को देखने के पश्चात और हम सब को देखने के पश्चात हो सकता है कि ये लोग सब थोड़ा पिघल जाएं, जैसे अर्जुन पिघल रहे हैं, तो अर्जुन की अपेक्षा क्या थी कि ये पिघल जाएं। इसलिए अर्जुन अब यहां पर बस दो ही विकल्प, अब उनमें से एक ही विकल्प, दो विकल्प ये अर्जुन के सामने कि ये लोग पिघल जाएं और फिर यहां से रण को छोड़कर चले जाएं, रणभूमि को, ये हो तो ये तो जाने नहीं वाले, और मैं बिना युधिष्ठिर महाराज की अनुमति के मैं नहीं रण को छोड़कर जा सकता और इन्हें मैं मार भी नहीं सकता। इतने सारे श्लोक क्यों बोले, इन्हें मैं मार भी नहीं सकता, तो एक ही विकल्प मेरे सामने है, इनके हाथों मैं मारा जाऊं। तो इनके हाथों यदि मैं मारा जाऊंगा तो मुझसे पाप भी नहीं होगा और मुझे ऊंचे लोगों की प्राप्ति भी होगी। तो बहुत बुद्धिमान अर्जुन थे ये, जो हालांकि शोक में, शोक संविग्न, शोक के सागर में डूबे हुए ये श्लोक बोल रहे हैं, शोक में श्लोक बोला। तो उसमें भी अर्जुन, उनकी बुद्धिमत्ता देखिए, उसमें वो ये दिखा रहे हैं कि यदि मैं निहत्ता इनके सामने मर भी जाऊं रणभूमि पर, तो मुझे ऊंचे लोग प्राप्त अवश्य ही होने वाले। तो ये अर्जुन की अपेक्षा थी। अब भगवान की आशंका, ये दो शब्द पर गौर कीजिए आप, अपेक्षा और आशंका। अंग्रेजी में किसे क्या कहेंगे, अपेक्षा को अर्जुन्स एक्सपेक्टेशंस एंड कृष्णास फियर, कृष्णास डाउट, आशंका। तो दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान, आज ये जो श्लोक हम लिए हैं अर्जुन का, इस श्लोक को लेते हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी आशंका व्यक्त कर रहे हैं दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक में, जिसमें वो कहते हैं भयात रणे उपतरम। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम ये मत सोचो कि यहां पर तुम अपने शस्त्र रख दोगे तो ये लोग सब तुम्हारा बहुत गुणगान करेंगे, देखो कितना बड़ा विरक्त है, इसे सब कुछ आते हुए भी ये शस्त्र नहीं उठा रहा, अरे ये तुम्हें कायर बोलेंगे, ये तुम्हें इस प्रकार से तुम्हारे ऊपर लांछन लगाएंगे ये दुर्योधन और सब कि अर्जुन हमसे डर गया, देखो 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 डर गया। भगवान ऐसे इस वाणी में बोल रहे थे, ऐसे बोलेंगे, इतना बड़ा अर्जुन भी, तो दुर्योधन क्या प्रशंसा करने वाला है अर्जुन का, भगवान बोलते हैं कि दुर्योधन आके तुम्हें आरती उतारेगा तुम्हारी कि कितना तुम्हारे अंदर वैराग्य है, और मैं पिघल गया तुम्हारे वैराग्य को देख, कुछ नहीं ये लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, तुम्हें ये जो करने जाने वाले हो उसके वजह से। तो ये भगवान की आशंका, अर्थात नम्रता एवं कायरता में भगवान अंतर बताने वाले हैं कि नम्रता किसे कहते हैं और कायरता किसे कहते हैं। अक्सर कोई व्यक्ति यदि कायर है तो फिर कोई व्यक्ति मान लेता है कि बहुत बहुत नम्र है, विनम्र है, और कोई व्यक्ति विनम्र है इसका अर्थ यह नहीं कि वो कायर है। जैसे कई बार आप देखो, हमने बंबई में अनुभव किया, लोकल ट्रेन में झगड़ा चालू होता है और कई बार झगड़ा, इतनी भीड़ है, भीड़ में झगड़ा चालू होता है तो एक व्यक्ति दूसरे को गाली देना शुरू करता है, और मैंने स्वयं ही अनुभव किया है, वो व्यक्ति इसको देख भी नहीं रहा, दिखता भी नहीं, वो जिससे झगड़ा चालू है वो आपस में देख भी नहीं रहे, तो पीछे से चिल्लाता है, अरे उतरो उतरो दादर आ रहा है, वो पीछे खड़ा चिल्ला रहा है, अरे उतरो, और ट्रेन चल रही है, उतरो उतरो दादर आ रहा है। तो जो आगे खड़ा है वो बोलता है, तो पीछे क्या कर रहे थे अब तक? तो वो पीछे से बोलता है, तुम्हारी आरती उतार रहे थे। और एक बार मैंने सुना इस प्रकार से झगड़ा चालू हुआ और घमासान युद्ध केवल वचनों का, और उसके पश्चात हाथापाई बाकी रह गई थी। परंतु जब जिसने ये युद्ध शुरू किया वचनों का, वाघ बाण मारने शुरू किए, जब उसने उस दूसरे व्यक्ति को देखा, इतना बड़ा 6 फुट का और मोटा ताजा तगड़ा, तब बोला, उतरिए ना, उतरो उतरो, आप ही के लिए तो जगह बना रहा था। तो तुरंत फिर विनम्र बन गया। तो हम विनम्रता का अर्थ ये नहीं कहते कि कोई व्यक्ति कायर बने। इसलिए श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में कहा करते थे, अ डिवोटी इज लायन एट चेज, लैम्ब एट होम। कि जब भगवान श्री कृष्ण का वो प्रचार करता है और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के विषय में वो शास्त्र प्रस्तुत करता है, तो एक सिंह के समान है, परंतु भक्तों के मध्य वो एक लैम्ब, क्या कहते हैं उसे, शेली, शेली के समान नम्र एकदम। अभी कभी आपने उसको देखा है वो लैम्प को भोगते हुए किसी के ऊपर, बकरी भी हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी आवाज निकलती है। तो यहां पर ये समझ में आ रहा है, भगवान अर्जुन के इस श्लोक को लेकर सिखा रहे हैं कि तुम ये जो तथाकथित नम्रता दिखा रहे हो, ये तुम्हारी नम्रता नहीं, ये तुम्हारी कायरता है। और फिर पाप एवं मृत्यु में अधिक भयावह कौन, यदि हमारे सामने ये दो प्रस्ताव रखे जाएं या किसी के सामने, मृत्यु का भय और पाप में लगने का भय, तो उसमें से ज्यादा भयावह कौन है, यहां पर अर्जुन इस श्लोक में बता रहे हैं। और अंततः अर्जुन कहते हैं श्लोक में, क्षेम तरम भवे, तो उसकी व्याख्या भी आज की जाएगी। तो हम इसे लेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा अर्जुन यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, पाप एवं मृत्यु में अधिक भयावह कौन। कई बार पापों के वजह से मृत्यु भयावह होती है, व्यक्ति अलग अलग प्रकार के पापों में लगता है और उसे जो परिणाम मिलता है उन पाप कर्मों का, वो अक्सर या तो इस जन्म में या अगले जन्म में बहुत भयानक मृत्यु के रूप में मिलता है। कई बार देखिए लोगों की मृत्यु बहुत भयावह तरीके से होती है, बहुत ही निर्दयी तरीके से मृत्यु, मृत्यु भी आजकल कलयुग में इतने अलग अलग प्रकारों से लोगों की मृत्यु हो रही है कि यमराज भी सोच रहे होंगे कि ये इन्होंने ही आपस में, उनको कोई मृत्यु के अलग अलग तरीके, उनके लिस्ट होगी शायद यमलोक में कि कोई पहले के युगों में कैसे मरा करता था, वो लिस्ट पुरानी हो गई आजकल तो लोगों के पास, यहां कलयुग में खुद की लिस्ट बना ली है कि कैसे लोग आधुनिक तरीके से मरते हैं, मरेंगे तो भी आधुनिक तरीके से, कोई पिछड़े हुए तरीके से लेने, आधुनिक तरीके से मरेंगे, मरेंगे तो भी कैंसर से या एड्स से या स्वाइन फ्लू। अब हो सकता कभी यमराज जी ने भी सोचा भी नहीं होगा कि सूरों की वजह से मनुष्य जाति मर रहे हैं यहां पर डर डर के। तो मृत्यु और पाप, इनका संबंध है कि नहीं? पाप और मृत्यु का संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध। और मृत्यु और पाप और पीड़ा, ये पीड़ा भी बहुत ही घनिष्ठ संबंध, ये पाप और मृत्यु के बीच की रस्सी है पीड़ा। यदि ये पूछा जाए कि पाप और मृत्यु किससे बांधे गए हैं, तो पाप और मृत्यु पीड़ा की रस्सी से बांधे गए। अब हम कुछ उदाहरण लेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि ये व्यक्ति कैसे पाप में नहीं लगना चाहते थे और इन्हें मृत्यु स्वीकार थी। जैसे अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं ये पाप करने के बजाय मर जाऊं तो अच्छा। तो अक्सर कलयुग में तो उल्टा होता है, कलयुग में दूसरों को मार डालता है कोई व्यक्ति, परंतु यहां पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि जिसमें इन महानुभावों ने अपने प्राण त्यागने के लिए वो तैयार हो गए, सामने यदि पाप आ रहा था जिसमें वो लग सकते थे। तो सबसे पहला उदाहरण है श्रीमती सीता देवी का। श्रीमती सीता देवी, इनके पूर्व जन्म के विषय में बताया गया है, वेदवती नाम की कन्या थी और ये भगवान श्री विष्णु को पति के रूप में चाहती थी। तो वेदवती वो तपस्या में लगी हुई थी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, और रावण वो पिछले जन्म से ये सब करतूत करता था। तो रावण वहां पर विचरण करता हुआ वेदवती की सुंदरता को देखता है, तो वो वेदवती पर बलात्कार करने का प्रयास करता है रावण, और उसी समय वो केश पकड़ता है, वेदवती की केश पकड़ता है जो तपस्या में लगी हुई, और वेदवती अपने हाथों से जो रावण ने केश पकड़े वो केश काट देती है। इतनी शक्ति, इतना तपोबल उनमें आ जाता है कि अपने उनके हाथ एक कटारी का काम करते हैं। और उस समय वेदवती रावण से कहती हैं कि तुम मुझे जो तुम चाहते हो वो तो सिद्ध कभी नहीं कर पाओगे, और तुमने जो ये पाप किया है इस पाप के वजह से मैं अपने प्राण त्यागूंगी, क्योंकि मैं इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहती। तो वेदवती उसी समय उनकी तपस्या से अग्नि उन्होंने प्रज्वलित की और अग्नि में उन्होंने प्रवेश किया और अपने प्राण उन्होंने इस प्रकार से छोड़ दिए, क्योंकि सामने एक पाप की क्रिया होने जाने वाली थी। तो फिर वो सीता देवी के रूप में फिर आई और रावण उन्हीं के वजह से फिर रामचंद्र जी ने जो रावण का वध किया। और सीता देवी जब रावण ने अपहरण कर लिया अब यहां नासिक क्षेत्र से ही, और जब लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में सीता देवी को रखा, तो वहां पर सीता देवी सोच रही थी कि रावण ने मुझे स्पर्श किया है और रावण ने मुझे यहां पर लाकर बंदी बना दिया और उसकी काम वासना के वशीभूत रावण। तो सीता देवी अशोक वाटिका में अपने प्राण को फिर से छोड़ने के लिए कुछ प्रयास ढूंढ रही थी। तो न तो वहां पर कोई विष मिला, न कोई और हथियार मिला जिसके द्वारा वो अपने प्राण खो बैठे। तो उन्होंने अपने केशों को, अपने जो ये चोटी होती है उसे अपने गले में गलफांस के रूप में बांधकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। और हालांकि आत्महत्या भी एक पाप है, परंतु यह उदाहरण ऐसा है कि प्रभु श्री राम के सामने मैं कैसे जाऊंगी, इसलिए वो सोचते हुए सीता देवी ने अपने प्राणों को खत्म करने का निश्चय किया। और जब वो करने ही वाली थी उस समय हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का समाचार सुनाया और फिर सीता देवी को रोका। इसके आगे जब अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा के समय भी सीता देवी ने सोच लिया कि बस यदि प्रभु श्री राम को मेरे सतीत्व पर विश्वास नहीं तो मैं इस अग्नि में ही अपने प्राण छोड़ दूंगी। तो यह सोचते हुए सीता देवी अग्नि में प्रवेश की उन्होंने, परंतु अग्निदेव उन्होंने सीता देवी को वैसे ही खरा का खरा बाहर लेकर आए। तो वहां पर भी उन्होंने निश्चय कर लिया था, परंतु अग्निदेव वो सीता देवी को मरने नहीं दिए। और फिर अंततः जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम ने कहा कि सीता देवी को छोड़कर आए, वो धोबी की कथा हम सब जानते हैं, उस समय भी सीता देवी वो अपने प्राण छोड़ने वाली थी, परंतु एक ही कारण के वजह से वो रुक गई, क्योंकि गर्भवती थी और प्रभु श्री राम के कुल को बढ़ाने वाले पुत्र लव और कुश उनके गर्भ में थे, इसलिए उन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़े। तो सीता देवी का उदाहरण है जिन्होंने अलग अलग तरीके से जब उनके जीवन में कोई भी पाप या कोई भी ऐसी दुर्घटना हुई जिसके वजह से उन्होंने सोचा कि इसके बदले मैं अपने प्राण छोड़ दूं, तो ये उदाहरण जैसे अर्जुन इस शोक में है कि इनको मारने के बजाय मैं अपने प्राण छोड़ दूं। श्री रामचंद्र इनका उदाहरण, प्रभु श्री रामचंद्र हालांकि ये अपने पिता दशरथ महाराज के आदेशों का पालन इन्होंने किया, वनवास गए, सीता देवी का अपहरण हुआ, सीता देवी को ढूंढने के लिए पूरी वानर सेना को लगा दिया इन्होंने, उस समय भी जब सीता देवी के वियोग में प्रभु श्री राम अपने प्राणों को छोड़ने की बात किया करते थे, लक्ष्मण जी संभाल लेते थे प्रभु श्री राम को। और फिर एक घटना रामायण में है जब सुग्रीव और प्रभु श्री राम और उनका पूरा जो वानर सेना, वो पूरा ग्रुप बटालियन वो साथ में थे, तो सुवैल पर्वत, पर्वत का नाम सुवैल, उस पर्वत पर प्रभु श्री राम ने और सुग्रीव ने देखा रावण अपने गोपुर के छत पर खड़ा। तो सुग्रीव को इतना क्रोध आया रावण को देखकर, सुग्रीव वहां पर छलांग लगाकर रावण को मारने के लिए छत पर पहुंच गए। और फिर सुग्रीव और रावण इनका द्वंद्व युद्ध हुआ और बहुत समय तक प्रभु श्री राम प्रतीक्षा में थे कि कब सुग्रीव वापस आएंगे। सुग्रीव नहीं आए तो प्रभु श्री राम ने निश्चय कर लिया कि सुग्रीव यदि वापस नहीं आते तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। और उन्होंने, मान लो रामायण में बताया गया कि वसीयत भी लिख दी कि हालांकि ये सुग्रीव के संदर्भ में ही, कि किष्किंधा का राज सुग्रीव का, लंका का राज्य विभीषण का, मैं अपने प्राण छोड़ूंगा कब, रावण को मारकर, रावण को मारकर लंका का राज दूंगा विभीषण को, किष्किंधा का राज दूंगा सुग्रीव को और अयोध्या का राज भरत को, और मैं अपने प्राण छोड़ने वाला हूं जैसे अर्जुन फिर से। तो उसी प्रकार का भाव, तो यहां पर यह एक उदाहरण प्रभु श्री राम का जो अपने प्राण छोड़ने वाले थे, इस प्रकार की त्याग की भावना दिखाते हुए। अगला उदाहरण है श्रीमती रुक्मिणी देवी का। श्रीमती रुक्मिणी देवी, इनकी कथा भी हमने सुनी, उन्होंने वो अपना पत्र, उनकी जो इच्छा, शिशुपाल से इनका विवाह होने वाला था और उसी दिन इन्होंने दूत को भेजा, ब्राह्मण को भेजा, पत्र के द्वारा भगवान को बुलाया, आह्वान दिया और उन्होंने पत्र में लिखा कि प्रभु यदि आप आकर मुझे यहां से नहीं ले जाते तो मैं अपने प्राण त्यागने वाली हूं। और उन्होंने यह भी कहा कि कैसे वो प्राण त्यागेंगे, कि मेरा विवाह शिशुपाल से हो जाएगा यदि आप नहीं आओगे, और शिशुपाल से विवाह हो गया तो मेरा अनशन चालू, फास्टिंग, न जल पीना न कुछ खाना, उसी प्रकार से, और वो मैं तपस्या करूंगी और उस तपस्या में शास्त्र के अनुसार महाभारत में भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि अनशन कर भगवान को ध्यान में रखते हुए अपने शरीर को त्यागता है तो उसे आत्महत्या नहीं कहते। नहीं तो आत्महत्या एक पाप है, परंतु यदि कोई अनशन, आप लोग समझते हैं ना, बस खाना पीना बंद और फिर जब तक सांस चलती रहे तब तक भगवान का नाम लेते, तो रुक्मिणी देवी ने यह निश्चय किया कि यदि शिशुपाल से मेरा विवाह हो जाता है तो खाना पीना बंद, बस आपका नाम लेते हुए मेरे प्राण भी जाएंगे और तपस्या भी हो जाएगी। बहुत बुद्धिमान रुक्मिणी देवी, तो तपस्या भी हो जाएगी और उस तपोबल से इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आप पति रूप में तो मुझे मिलोगे। तो देखिए यहां पर रुक्मिणी देवी वो भी अपने प्राणों को छोड़ने की बात कर रही थी, यदि भगवान श्री कृष्ण नहीं मिलते उसके बदले यदि शिशुपाल जैसा निकम्मा उसके साथ यदि इनका विवाह होने जाने वाला था। तो अगला उदाहरण है श्रील मुरारी गुप्ता, चैतन्य महाप्रभु के ये बहुत ही निकट के पार्षद, और मुरारी गुप्ता ये हनुमान जी स्वयं हनुमान जी चैतन्य महाप्रभु की लीला में मुरारी गुप्त के रूप में आए। तो इतना चैतन्य महाप्रभु से ये प्रेम करते थे, इन्होंने एक दिन इनके मन में ये विचार आया कि चैतन्य महाप्रभु जो अपनी इतनी लीलाएं कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु यदि मुझसे पहले अपने धाम चले गए तो मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा। यदि चैतन्य महाप्रभु पहले चले गए मुझसे या मैं चैतन्य महाप्रभु के बाद अपना देह त्यागता हूं तो मुझे यह सहन नहीं होगा, चैतन्य महाप्रभु मेरे सामने मुझे छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए मुरारी गुप्त इन्होंने बस एक दिन ये विचार आया तो ये एक इतनी बड़ी धार वाली कटारी लेकर आए खरीद कर, और किसी पुण्य दिवस की प्रतीक्षा में थे जब वो गला काट कर, बस एक बार ये विचार आ गया। सोचिए क्या भक्ति इनकी। अभी हमारे मन में कभी ऐसा विचार आता है कि कोई फलाना वरिष्ठ कोई भक्त है, या वो एक हमारे पूना के एक भक्त जानवा माता जी की पुत्री जो केवल 20 वर्ष की थी और उनका नाम था श्याम सुंदरी देवीदासी, केवल 20 वर्ष की ये थी और इनको कुछ बीमारी हुई और ये नहीं रही अब, और ये हर समय ये प्रार्थना किया करती थी अपने गुरु महाराज को देखते हुए। ये प्रार्थना किया करती थी कि मैं ये दिन नहीं देख सकती कि मैं जीवित हूं और मेरे गुरु महाराज छोड़कर चले गए। इसलिए वो जब भी किसी यात्रा में जाती तो तीव्र प्रार्थना करती, केवल एक ही प्रार्थना उनकी कि मेरे प्राण मेरे गुरु महाराज से पहले छूटने चाहिए। और वो जब अपने अंतिम दिनों में उन्होंने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। बहुत महान हृदय होना चाहिए इस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए भी, अर्थात इसे कहते हैं शुद्ध प्रेम अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, इसे कहते हैं शुद्ध प्रेम। तो मुरारी गुप्त इस प्रकार की भावना उनके अंदर आ गई कि वो पूर्ण तैयारी में अब अपने प्राण छोड़ने के लिए। तब चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त के घर पहुंच गए, वो तो अंतर्यामी जान गए। तो मुरारी गुप्त अचानक चैतन्य महाप्रभु अपने घर में देखते हैं तो उन्हें अंदर बुलाते हैं और फिर उन्हें पूछते हैं कि आज कैसे आना हुआ, क्या आपकी सेवा करूं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मेरे भक्त हो? हां, आप ही का तो भक्त हूं मैं, तो मैं जो बोलूंगा वो करोगे? मुरारी गुप्त जी कहे, अवश्य ही, आप जो बोलो, प्राण न्योछावर है आपके लिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहे, मुझे आपके प्राण नहीं, वो चाकू लेके आओ। वो जो इतनी बड़ी कटारी खरीद के लाए ना 2-3 पे, वो लाओ। अब मुरारी गुप्त जी समझ गए कि ये स्वयं भगवान, तो जान गए, तो इनके अनुमति के बिना, इनके इच्छा के बिना ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त जी को रोका, जो केवल ये विचार उनके मन में आ गया कि चैतन्य महाप्रभु जी मुझसे पहले चले गए तो मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा, वो अपने प्राण त्यागने के लिए। और आगे का उदाहरण है स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने मुरारी गुप्त जी को रोका, चैतन्य महाप्रभु। अब यहां पे देखिए, प्रभु श्री राम उनका उदाहरण हमने लिया और वही श्री राम अर्जुन को रोक रहे हैं। इसे कहते हैं भक्त भगवान का आदान प्रदान। तो चैतन्य महाप्रभु नवदीप में जब थे तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन पाखंडियों का संभाषण सुना। चैतन्य महाप्रभु जो श्रीवास आंगन में नृत्य किया करते थे, कीर्तन किया करते थे रात रात भर अपने पार्षदों के साथ, तो कुछ पाखंडी, कुछ ऐसे तथाकथित कर्मकांडी ब्राह्मण जो चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों की आलोचना किया करते थे, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जाते जाते ये लोग सब चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का तिरस्कार करने लगे। वो वैष्णव अपराध चैतन्य महाप्रभु ने सुन लिया, केवल कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए वो वैष्णव अपराध जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने कानों से सुना, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहे कि मेरे हृदय का सारा कृष्ण प्रेम क्षीण हो गया आज। और हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु अचानक वो चिंतित, चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्या बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैंने रास्ते में ये पाखंडियों के मुख से वैष्णव का अपराध सुन लिया, मेरे हृदय का जितना कृष्ण प्रेम, अब सोचिए चैतन्य महाप्रभु के हृदय का कृष्ण प्रेम, हम यदि बोलें तो एक दो ग्राम भी कुछ है नहीं अंदर, और वो जाएगा भी तो कहां जाएगा, तो होगा तो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जिनका हृदय बना हुआ, जो कि राधा रानी स्वयं उनके भाव में आए हुए, उन्होंने कहा कि मेरा सारा कृष्ण प्रेम क्षीण हो गया आज। ये बोलते गंगा जी में कूद गए आत्महत्या करने के लिए। क्या फायदा मेरे जीने का, मेरे जीवन में यदि कृष्ण प्रेम नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा। चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हुए कूद गए। देखिए शुद्ध भक्ति के सारे कुछ अजीबो गरीब लक्षण हमें लग रहे होंगे, परंतु ये साधारण लक्षण है, सामान्य लक्षण है शुद्ध कृष्ण भक्ति के। तो वो गंगा जी में कूद गए, और फिर हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु उन्होंने वो भी कूदे और चैतन्य महाप्रभु को फिर बचाकर बाहर लाए, और फिर उन्होंने उनको होश में लाया, कीर्तन किया, और फिर चैतन्य महाप्रभु के अंदर फिर वो कृष्ण प्रेम संचारित हुआ। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला संपन्न कर चले गए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के विरह में गोवर्धन पर्वत पर चढ़ गए छलांग लगाने के लिए। ऐसी विरह की अग्नि एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी के शरीर में कि वो सहन नहीं कर पा रहे थे कि श्रीमान महाप्रभु हमें छोड़कर चले गए, इसलिए गोवर्धन की चोटी से छलांग लगाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, परंतु पार्षदों ने, गोस्वामियों ने रघुनाथ दास गोस्वामी को रोक लिया। श्रील सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इनके शरीर से, इन्हें चर्म रोग हो गया था और इनके शरीर के एक एक रोम छिद्र से मवाद पस निकल रहा था, और जगन्नाथ की रथ यात्रा का समय आ रहा था। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मैं जो चैतन्य महाप्रभु मुझे बुलाए हैं जगन्नाथपुरी, तो चैतन्य महाप्रभु की तो आदत है वो मुझे आलिंगन करते हैं, और यदि इस बीमारी के साथ जो इतना मवाद पस निकल रहा है, इसमें यदि चैतन्य महाप्रभु इनका गौर वर्ण गौरांग के वो यदि मुझे आलिंगन करेंगे तो ये पूरी जो मेरी बीमारी है उनके दिव्य शरीर पर आएगी, क्या फायदा इस शरीर को मुझे रखकर, तो उन्होंने क्या निश्चय किया कि जगन्नाथ जी का जो रथ चलता है उसके पहिए के नीचे अपने प्राण ये छोड़ेंगे। और चैतन्य महाप्रभु जान गए, तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा का समय आया, चैतन्य महाप्रभु ने देखा सनातन गोस्वामी आए हैं, तो अचानक चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बुलाए अपने पास और बोले, तुम क्या सोचते हो, ये शरीर तुम्हारा है कि तुम इसे खत्म कर सकते हो? ये तुम्हारा प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये मेरा प्रॉपर्टी है कि नहीं? पहले सनातन गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, ये तुम्हारा शरीर किसका प्रॉपर्टी बताओ? बोले आपका। तो मेरे प्रॉपर्टी को तुम कैसे खत्म कर सकते, पहले से तुमने साइन करके हैंड ओवर कर दिया है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है भाई, यहां पर अभी अतिक्रमण नहीं हो सकता। तो सनातन गोस्वामी, ये देखिए ऐसे महान महान गोस्वामी जिनका इस प्रकार का भाव था। नरसिंह मेहता, आप लोग इनके विषय में सुने, भगवान श्री कृष्ण के बहुत अनन्य भक्त हुए गुजरात के। इनके जीवन की घटना ऐसी, एकादशी, जैसे आज एकादशी है, आज एकादशी है ना, हाँ मैं द्वादशी बोल लिया, आज एकादशी, आज दोनों है, द्वादशी भी है, द्वादशी कैसे हो सकती है? अच्छा, जो कल करते हैं। तो एकादशी का दिन, और नरसिंह मेहता जी वो एकादशी के दिन कुछ भी नहीं लेते थे, कुछ भी नहीं, न पीना न खाना, हरे कृष्णा, ऐसी उनकी एकादशी। तो एक दिन एकादशी के दिन जब उन्होंने इस प्रकार का अपना व्रत रखा हुआ था, तो एक भिक्षुक आए उनके द्वार पर और उन्होंने भिक्षा मांगी, परंतु कुछ तो पका नहीं था, कुछ था ही नहीं। तो ये अपने भजन में लगे हुए, तो इन्होंने भिक्षुक से कहा कि भाई आज तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो एकादशी कर रहा हूं। तो भिक्षुक ने कहा, लेकिन मैं तो नहीं कर रहा ना, आप कर रहे होंगे एकादशी, मैं तो नहीं कर रहा। तब उन्होंने कहा, ठीक है, एकादशी खत्म होने के लिए कुछ ही समय बाकी है, तो तुम ऐसा करो कि और थोड़ा घूम के आओ या रुको, एकादशी पूरी हो जाए, द्वादशी में फिर तुम्हें बनाकर खिलाऊंगा। तो ये भिक्षुक रात भर नरसिंह मेहता जी के घर के सामने प्रतीक्षा में रात बिताई, और नरसिंह मेहता जी ने सुबह जब इस भिक्षुक को देखा तो ये मरा हुआ, भूख के कारण, जो भिक्षा नहीं मिली उसके कारण इसके प्राण चले गए। अब नरसिंह मेहता जी को इतना बुरा लगा कि मेरे एकादशी करने के वजह से किसी के प्राण चले गए, क्या फायदा मेरे जीवन का। अब सोचिए इनका भाव देखिए। तो इन्होंने स्वयं अपने हाथों से उस भिक्षुक का अंतिम संस्कार करना चाहा। अंतिम संस्कार किया, चिता जलाई, और जब इनकी चिता जल रही थी तो नरसिंह मेहता को सहन नहीं हुआ, उन्होंने चिता में प्रवेश किया। सोचिए, एक भिक्षुक जिनको कभी उन्होंने देखा नहीं, जानते नहीं, ऐसे ही आया, रात भर कुछ मिला नहीं, प्राण छोड़ दिए, उनके अंतिम संस्कार करते हुए वो उसके चिता में प्रवेश किए अपने प्राण छोड़ने के लिए, और वो भिक्षुक थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। स्वयं भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता को उस अग्नि से बाहर निकाले, और फिर नरसिंह मेहता की आंखों से आंसू, और उनकी आंखों से आंसू इसलिए, ये नहीं कि अब वो ढिंडोरा पीट रहे, अरे देखो 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 मालूम था मेरे को, ऐसा नहीं, उनकी आंखों से आंसू इसलिए कि भगवान आप आए, मैं आपको पहचान नहीं सका, क्या फायदा मेरी भक्ति का। तो ये सोचते फिर से प्राण त्यागने की, आप आए और आपको मैं पहचान नहीं सका, आप आए और आपने मांगा कुछ और मैं आपको दिया नहीं, क्या फायदा ऐसी एकादशी का। तो ये सब उदाहरण हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें यह ना लगे कि अर्जुन एक कायर व्यक्ति है, और अर्जुन कोई तमोगुण के शोक में है, शोक तमोगुण का होता है, जो लोग बहुत शोक करते हैं, हर समय शिकायत शिकायत ये वो रोते रहते हैं, वो तमोगुण का लक्षण। तो यहां पर अर्जुन ये सारे बाकी उदाहरण सुनकर अब हम कुछ निष्कर्ष पर आ गए होंगे कि अर्जुन भी इनकी तरह बहुत महान है, उनका कोई तमोगुणी शोक नहीं है अर्जुन का। तो अब क्षेमतरम, अर्जुन ने कहा क्षेमतरम भवेत। तो ये क्षेमतर या क्षेमतरम का अर्थ क्या होता है? क्षेम का अर्थ होता है सुरक्षा, योग क्षेमम वाम्यहम, समझ गए या अभी समझ गए? तो क्षेम का अर्थ होता है सुरक्षा, हमें केवल वही सुरक्षा ध्यान में, हाँ पॉलिसी है। यहां पर अर्जुन वो जो क्षेम संस्कृत का शब्द है, अर्थ सुरक्षा। तो यदि क्षेमतर, क्षेमतर का अर्थ होगा अधिक सुरक्षा, हाँ? और यहां पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, क्षेमतरम अर्थात आत्यंतिक सुरक्षा। एक है सुरक्षा, एक वो है ना, कौन सा वो अंबुजा सीमेंट, कौन सा डबल सुरक्षा, कौन सा सीमेंट है वो? अब ये जो तीन श्रेणियां हैं सुरक्षा की, तीन श्रेणियां, तो अर्जुन सुरक्षा की तीन श्रेणियों में क्षेमतरम बोल रहे हैं कि मैं उस प्रकार की सुरक्षा के विषय में चिंता कर रहा हूं। क्षेमतरम, केवल क्षेम या क्षेमतर नहीं, क्षेमतरम। तो क्षेम यह है शरीर के स्तर पर, क्षेमतर है मानसिक स्तर पर, और क्षेमतरम है आत्मा के स्तर पर। तो यदि अब आपसे मैं पूछूं कि कैसे आप समझो कि अर्जुन क्षेमतरम कैसे कहे, क्यों कहे, और बाकी जो दो श्रेणियां हैं क्षेम और क्षेमतर, इसे हम कैसे समझें? हालांकि सामने आपके लिखा गया है कि क्या अंतर है इनमें, परंतु अर्जुन के संदर्भ में, आज के श्लोक के संदर्भ में आप कैसे समझोगे कि ये कौन सी आत्मिक सुरक्षा के विषय में अर्जुन चर्चा कर रहे हैं? जैसे कि शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या क्या करते हैं, हाँ, खाते हैं ना सबसे पहले, शरीर बना रहे। हालांकि आजकल तो उसके वजह से बहुत लोग मर रहे हैं। प्रभुपाद लिखे हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तात्पर्यों में, कलयुगा पीपल विल नॉट डाई ऑफ अंडर ईटिंग, पीपल विल डाई ऑफ ओवर ईटिंग। और ज्यादातर बीमारियां ज्यादा खाने के वजह से, गलत खाने के वजह से ये सब हो रही है। तो शरीर की सुरक्षा लिखी है ये सब शारीरिक चीजों में, इसको सुलाना, इसको नहलाना, इसको खिलाना, इसके उपचार करते रहना, ये सब क्षेम, इसे कहेंगे क्षेम। और फिर मानसिक स्तर पर क्षेमतर। अब देखिए जो प्राणी हैं वो केवल क्षेम स्तर पर हैं, वो क्षेमतर नहीं है प्राणी, क्योंकि क्षमा करना, प्राणियों के जीवन में देखो वो मनोरंजन में ज्यादा रुचि नहीं रहते हैं, उनके कोई मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं चलते। ऐसे नहीं कि सारे कुत्ते नासिक के अब एकत्रित हुए, बहुत बोर हो रहे हैं आजकल, एक लाउड टीवी थोड़ा गली में लगाओ, तो उनके लिए केवल क्षेम बस, वो सुरक्षा। परंतु हम मनुष्य देखिए जब वो सब हो जाता है तब फिर क्षेमतर, तब फिर हमें थोड़ी और ज्यादा सुरक्षा मन के स्तर पर चाहिए। तो जैसे कि कोई व्यक्ति विवाह करता है तो विवाह एक है क्षेम, अर्थात शारीरिक स्तर पर कि पति पत्नी की देखरेख करता है, पत्नी पति की। तो पति लेके आता है क्या? पैसे, और पत्नी वो पैसों से खिलाती है खाना। तो दोनों के शारीरिक देखरेख, शारीरिक सुरक्षा एक दूसरे पर निर्भर। अच्छा, अब कई बार वो पति भी बना लेता है, तो वो एक अलग किस्सा है। परंतु यहां पर देखो कि दोनों क्षेम के स्तर पर एकत्रित आए, परंतु वहां तक ही सीमित नहीं रहता। अब दोनों के मन को भी संतुष्ट करना है उन्हें। तो जब वो बेचारा थका मांधा आता है ऑफिस से, तो यहां पर पत्नी सजकर उसको प्रसन्नता देने के लिए, और फिर ऐसा नहीं कि मैं यहां पे था, बर्मा 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 जा रहा था, तो वो फ्लाइट में ये टीवी का प्रोग्राम चल रहा था, वो इतना बड़ा टीवी उन्होंने फ्लाइट में लगा रखा था, तो उसमें ये कुछ ये सास बहू का सीरियल कुछ वो दिखाई दे रहा था। उसमें क्या दिखा रहे थे कि एक पत्नी सास बहू का सीरियल देख रही, तो सीरियल में वो सीरियल देख रही। मुझे बड़ा अच्छा हो रहा था, आजकल क्या दिमाग लगा के ये लोग बनाते हैं। तो उसमें वो देख रही है, वो अभी पति घर ऑफिस से आए नहीं, तो ये बैठा ये बैठी वो सीरियल देख रही, तो रो रही है क्योंकि उसमें वो रो रही है, तो ये देखते हुए रो रही है। शोक संविग्न मानसा, ये रोते हुए मिहिर छोड़ के चला गया, तुलसी तुलसी को मिहिर छोड़ के चला गया, और एक मेरा है कभी जाता ही नहीं। उसी समय घंटी बजी तो आ गया इनका, तो ये बोलता है डार्लिंग मैं आ गया, तो नई बात है क्या, आ गए तो आ गए, रोज तो आते हो। तो ये बोलता है ऑफिस से आया, अच्छा तो कहां सब्जी मार्केट से आते हो क्या रोज। और उसी समय वो छोटा लड़का, उनका लड़का भागते हुए आता है, मम्मी मम्मी रिमोट दो। क्यों चाहिए रिमोट? कार्टून देखना है। देख लो ना आ गया एक। तो अभी बच्चा क्या बोलता है देखो, मम्मी रोज एक ही कार्टून देख देख के बोर हो गया। तो वहां पर वो जो एक संबंध है, उस संबंध में वो मानसिक रंजन वो देना बहुत जरूरी है कि ठीक से बात करना, प्रेम से बात करना। यदि जो भी दो प्रेम से दो, घर पे भी आओ तो प्रेम से आओ, सब कुछ वो सब प्रेम से होना चाहिए। अर्थात क्षेमतर, वो सुरक्षा फिर पति पत्नी चाहते हैं, या कोई भी रिश्ते में माता पिता पुत्रों के साथ बच्चों के साथ। परंतु क्षेमतरम, इसके विषय में कभी कोई ज्यादा चर्चा नहीं करते। क्षेमतरम आत्मा के स्तर पर सुरक्षा जो अर्जुन यहां पे कर रहे हैं, हालांकि दूसरा अध्याय शुरू भी नहीं हुआ जिसमें आत्मा और शरीर का बताया जाएगा। अब यदि मैं पूछूं तो आत्मा की सुरक्षा अर्जुन कैसे यहां पर देख रहे हैं, या आत्मा की असुरक्षा कैसे अर्जुन देख रहे हैं? इनसिक्योरिटी, आत्मा की इनसिक्योरिटी कैसे देख रहे हैं अर्जुन? आप क्या कहोगे? पाप, इतना पाप पाप जो बोल रहे हैं अर्जुन, कि पाप के वजह से ये सब कुछ होगा, नारकीय जीवन, वर्ण संकर, प्रदूषण, स्त्रियों का समाज पूरा दूषित हो जाएगा। तो यहां पर अर्जुन केवल शारीरिक स्तर पर वो पाप के परिणाम नहीं देख रहे, आत्मीय स्तर पर। इसलिए अर्जुन जब बोल रहे हैं क्षेमतरम भवेत, कि मेरी इनसिक्योरिटी मैं अपनी आत्मा की देख रहा हूं कृष्ण, ये मत समझना कि मैं अपने शरीर की क्या इनसिक्योरिटी। अर्जुन ये तो भली भांति जानते थे कि इनमें से कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा युद्ध में, परंतु अर्जुन जो क्षेमतरम बोल रहे हैं, अर्थात अर्जुन को डर है कि कहीं मेरी आत्मा इस पाप के कारण दूषित ना हो जाए। तो बहुत ऊंचा स्तर है अर्जुन के सोचने का, और ये पहला अध्याय, ये पहला अध्याय है अर्जुन का। लेवल देखिए, जो श्रोता है अर्जुन उनका लेवल देखिए। तो अब अंतिम श्लोक जो कि संजय द्वारा कहा गया, एवं उक्त्वा अर्जुन असंख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। यहां पर अब संजय देख रहे हैं, आंखों देखा हाल संजय देखते हुए धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं जिसकी आंखें नहीं है। तो संजय यहां पर क्या देख रहे हैं कि अर्जुन इतने हताश हुए कि अर्जुन ने अपना गांडीव छोड़ा, सारे बाकी के अस्त्र शस्त्र छोड़े और अर्जुन बैठ गए, उपाविशत अर्जुन बैठ गए। तो यहां पर अर्जुन के शारीरिक संकेत से यह समझ में आ रहा है कि अर्जुन कितने हताश हो गए। जैसे कई बार आप देखो कोई व्यक्ति निराश हताश होकर बैठ जाता है ऐसे करके, तो समझ में आता है बहुत ज्यादा कुछ हुआ लगता है, क्योंकि फिर शरीर से संकेत कर रहा है वो उसको। तो अर्जुन जब अपने शरीर से वेपत्तुश्च शरीरे में, वो सब तो हो चुका, अब उस श्लोक में वेपत्तुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम श्रम सते हस्तात्, इसमें यह कहा गया है कि अर्जुन के हाथों से गांडीव सरक रहा था, केवल सरक रहा था, यहां पर तो पूरा ही गिर गया और अर्जुन बैठ गए, अर्थात बस इससे ज्यादा मैं और कोई तर्क वितर्क नहीं प्रस्तुत कर सकता, इससे ज्यादा अब मेरे में कोई शक्ति नहीं है कुछ भी करने की। अर्थात इसे यह भी बोल सकते हैं मैंने अपने हाथ ऊपर कर दिए भगवान, सरेंडर। अभी तक वो श्लोक बोलेंगे बोले नहीं है, परंतु अपनी शारीरिक क्रिया से दिखा रहे हैं। तो यदि हम अर्जुन की यह स्थिति को देखें, जब संजय बोल रहे हैं शोक संविघ्न मानस, केवल शोक नहीं पूर्ण रूपेण निमग्न संविघ्न उस शोक में अर्जुन, और बैठ गए उपाविशत। तो भौतिक तथा आध्यात्मिक शोक, अब जैसे कि हमने इसकी चर्चा की कि जब कोई व्यक्ति बहुत शोकाग्रस्त रहता है तो वो तमोगुण का लक्षण है, हर समय शिकायत, हर समय गलतियां ढूंढते रहना, हर समय नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव एटीट्यूड। परंतु आध्यात्मिक शोक भी होता है। अब यहां पर सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेंगे, अज्ञान के द्वारा उत्पन्न शोक। कईयों के शोक ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होते हैं और कईयों के अज्ञान के द्वारा। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण ये चतुर्थ स्कंद में राजा पुरंजन का। तो राजा पुरंजन, वो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उन सब को छोड़ते हुए अब अपना देह त्याग ये करने वाले हैं मृत शैया पर। तो ये शोक कर रहे हैं कि इन्हें कौन संभालेगा। हालांकि आजकल वो बेचारा मर रहा है और पत्नी भी शोक कर रही है, तो आप तो जा रहे हैं तो मुझे कौन संभालेगा। अरे वो बेचारा पीड़ा में है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं, मुझको कौन संभालेगा। तो वो एक अलग प्रकार का शोक या शौक। यहां पे महाराज पुरंजन वो शोक कर रहे हैं अपनी पत्नी और बच्चों के विषय में। तो ये है भौतिक दृष्टिकोण या भौतिक स्तर का शोक, जिसमें व्यक्ति केवल शोक कर रहा है अपने शरीर से संबंधित जो भी कुछ है उसके संदर्भ में। तो अज्ञानवश ये महाराज पुरंजन का शोक बताया गया है, और इसका परिणाम क्या, ये कैसे भौतिक शोक कहा जाएगा या अज्ञान द्वारा शोक प्रेरित कि महाराज पुरंजन को फिर एक स्त्री का शरीर मिला, अपनी पत्नी के विषय में सोचते 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 मरे और मिला क्या, फिर एक स्त्री का शरीर। तो यह परिणाम हुआ, इसलिए यह अज्ञान के द्वारा भौतिक शोक। एक और उदाहरण है, महाराज भरत, ये रामायण वाले नहीं, यह है पांचवें स्कंद में इनका उदाहरण कि महाराज भरत वो तपस्या के लिए पूरा राज, ये जो पूरा हमारा भारत देश इनके नाम से, महाराज भरत के नाम से, ये अपना पूरा राज्य छोड़कर वन में गए तपस्या के लिए और वहां पर एक हिरण से आसक्त हो गए। और महाराज भरत इतने आसक्त हो गए कि एक दिन हिरण जब दिखाई नहीं दे रहा था तो महाराज भरत इस प्रकार शोकाग्रस्त, श्लोक है पांचवें स्कंद में, महाराज भरत हिरण का गुणगान करते हुए, अरे वो हिरण के जो पद चिन्ह, उन पद चिन्हों को देखते हुए तो मेरे सांसें चल रही थी। देखिए उनका शोक, उसके पद चिन्हों को देखते हुए तो मेरी सांसें चल रही थी, मैं जब चंद्रमा को देखता तो चंद्रमा में जो मैं धब्बे देखता वो हिरण के शरीर पे जो धब्बे होते हैं उस प्रकार से मुझे हिरण की याद आती चंद्रमा को देखकर। और फिर वो बोल रहे हैं कि आज ये हिरण मेरे सामने नहीं है जो कि मुझे इतना प्रिय था, जिसके वजह से मैं जी रहा था। अब देखिए हिरण के वजह से ये बोल रहे जी रहे थे, जिसके वजह से मैं जी रहा था, पता नहीं कोई खूंखार प्राणी इस हिरण को मार दिया हो, यदि उसने हिरण को मार दिया है तो मेरे जीने का क्या फायदा। और महाराज भरत इस प्रकार का शोक करते हुए मरे, क्या बने, हिरण, जो कि भाव प्लेटफॉर्म पर थे, ये कोई ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बोल रहे हम, अर्थात भाव भक्ति के स्तर पर, उस स्तर पर वहां से हिरण की योनि में, सोचिए, अरे कोई थोड़ी सी भी भक्ति कर लेता तो कम से कम मनुष्य जन्म तो मिलता है, परंतु इनको हिरण की योनि मिली, क्यों, क्योंकि शोक किया मरते समय हिरण का। राजा सुयज्ञ की रानियां, ये सातवें स्कंद में ये कहानी का वर्णन है श्रीमद् भागवत के। एक राजा सुयज्ञ हुए और ये अपना शरीर छोड़े अकस्मात युद्ध में, और इनकी रानियां पटरानियां आकर इतना शोक कर रही थी, पटरानियां आकर इतना शोक कर रही थी कि वो अंतिम संस्कार नहीं करने दे रही थी, वो शरीर से दुर्गंध आना शुरू हो गया, छोड़ नहीं रहे शरीर को, हम कैसे बिना तुम्हारे रहेंगे, और इतना शोक। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि पहले की ये पत्नियां इतना शोक किया करती थी, जैसे पूछा गया कि आजकल इनको पूछें तो क्या प्रॉब्लम्स, क्या शोक हैं, तो दो प्रकार के शोक कहते हैं, एक है नौकर नहीं है परसों से और ये पति है बरसों से, तो इससे डेडली कॉम्बिनेशन क्या हो सकता, नौकर नहीं परसों से। और इसलिए एक एक पत्नी अपने पति से पूछती है कि आप जो इतना मुझसे मोहब्बत करते हो, तो आप अगले जन्म में मेरे साथ रहोगे क्या? वो कहता हां, लेकिन मैं नौकर बन के आऊंगा तुम्हारा। नौकर क्यों? क्योंकि घर में सबसे ज्यादा प्रेम उस पत्नी को नौकर से था, तो नौकर को प्रेम से बोलती, कल आना, मैं इंतजार करूंगी, कल आना, इनके जाने के बाद आना। तो उससे बोला, इससे अच्छा तो मैं नौकर बनता हूं। तो यहां पर ये रानियां इस प्रकार का शोक कर रही थी कि वो शरीर को छोड़ नहीं रही, शरीर से दुर्गंध आ रही है, और अंतिम संस्कार नहीं, वो भूत की योनि में जाने की नौबत आ गई राजा की। तो फिर वो रानियों को बताया गया, उनको शास्त्र की वाणी सुनाई गई, और फिर बाद में फिर छुड़ाया गया शरीर। तो ये अज्ञान द्वारा उत्पन्न शोक, ये है कुलिंग पक्षी, एक नर और मादा कुलिंग पक्षी की ये कथा, ये 11वें स्कंद में है, जहां पर जो मादा कुलिंग, उसको शिकारी ने पकड़ लिया जाल में, तो जो उसका पति नर कुलिंग, मिस्टर कुलिंग, उसने जब देखा कि मेरी पत्नी को पकड़ लिया है शिकारी, तो शोक करना शुरू किया, तो शोक करना शुरू किया कि अरे मेरी पत्नी जा रही है, अब मैं कैसे इसके बच्चों को संभालूंगा, कैसे मैं जी पाऊंगा। और इस प्रकार से जब वो शोक कर रहा था जोर जोर से, तो शिकारी ने देखा एक और है, पकड़ो इसको भी मारो, तो वो भी पकड़ा गया। तो कहा गया है कि यदि वो उस प्रकार का शोक नहीं करता तो कम से कम अपने आप को बचा लेता और बच्चों को फिर बचाता। तो फिर बच्चे देखे कि पिता भी गए, तो बच्चे भी शोक करने लगे, तो बच्चों को भी शिकारी ने पकड़ लिया, तो सब पूरा परिवार अंदर। तो ये उदाहरण दिया गया है अज्ञान द्वारा, ये जो शोक इन्होंने किया इसका परिणाम क्या हुआ। अब ज्ञान द्वारा उत्पन्न शोक, ज्ञान द्वारा उत्पन्न शोक ये शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। इसमें उदाहरण है 3रे स्कंद से माता देवहूति का। माता देवहूति का विवाह हुआ किनसे? कर्दम मुनि, जो कि, और दोनों ये माता पिता बने कपिल, कपिल मुनि के। तो कर्दम मुनि इन्होंने अब संन्यास लेने का ठान लिया, देवहूति माता से विवाह हुआ, कुछ समय के लिए वो रहे, और उसके बाद में फिर, हालांकि पहले से ये जंगल में विरक्त कई जीवन जीते थे, और स्वयं भुव मनु आए देवहूति का प्रस्ताव लेकर, तो कर्दम मुनि उन्होंने कहा ठीक है आपकी इच्छा है तो मैं विवाह कर लूंगा। और उसके पश्चात फिर कर्दम मुनि ने अपनी सिद्धियों से देवहूति के लिए बड़े बड़े आलीशान आकाश में बने हुए महल, सरोवर, ये सब कुछ उपलब्ध करा के दिए, और कर्दम मुनि अब निकल रहे। तब माता देवहूति शोक करती हैं। क्या शोक करती हैं? कि ऐसा पति मुझे मिला जो कि इतना बड़ा भक्त भगवान का, परंतु मैंने कभी आध्यात्म का धन नहीं लिया इनसे, मैंने केवल ये भौतिक सुख सुविधा ली, और धिक्कार है मेरे जीवन पर कि मैंने अपना आध्यात्मिक जीवन क्षेमतरम, उसे सुरक्षित नहीं बनाया इनसे वो सब कुछ प्राप्त कर। और क्योंकि माता देवहूति का ये शोक सत्वगुण या शुद्ध सत्व में ये शोक था अपने आध्यात्मिक जीवन के संदर्भ में, इसलिए कपिल मुनि उनके पुत्र बने। यहां पे शोक का परिणाम देखिए कि इन्होंने जो शोक किया, इस शोक के परिणाम के वजह से स्वयं भगवान अवतरित हुए उनके पुत्र के रूप में, इसलिए ये शोक इनका सराहनीय, ज्ञान द्वारा प्रेरित या उत्पन्न। अजामिल का शोक भी ज्ञान द्वारा, जब अजामिल मृत शैया पर लेटा, अब उस 88 वर्ष की उम्र में, और यहां पर एक तरफ यमदूत एक तरफ विष्णुदूत, और उनका वार्तालाप चल रहा है कि इसे यमलोक जाना चाहिए या इसे नहीं जाना चाहिए। उस समय जब अजामिल ने यह वार्तालाप सुना तो अजामिल के ज्ञान की आंखें खुली, और अजामिल फिर लेटा हुआ अपने आप को धिक्कार देते हुए कहता है कि मैं अपने ब्राह्मण को छोड़कर एक वैश्या से विवाह किया और इतने कुकर्म किए मैंने, ऐसा पतन मेरा हुआ। और शोक में अजामिल, अपने आप को शोक में डालते हुए फिर दृढ़ निश्चय अजामिल ने किया कि मैं फिर से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। परिणाम क्या, विष्णुदूत ने अजामिल को बचा लिया उस शोक के कारण, उस पश्चाताप के कारण। और फिर अजामिल 12 वर्ष हरिद्वार में उन्होंने भक्ति की, शुद्ध भक्ति भगवान श्री कृष्ण की, और भगवत धाम अजामिल गए। तो अजामिल का शोक ज्ञान द्वारा उत्पन्न। 11वें स्कंद में पिंगला वैश्या, ये एक वैश्या और इसका उदाहरण दिया गया है। अवधूत ब्राह्मण देते हैं महाराज यदु को कि वैश्या और इसका जो धंधा था, इसके अनुसार वो एक संध्या के समय सज धज कर किसी पुरुषों ग्राहकों की प्रतीक्षा में थी और कोई ग्राहक उस दिन आए नहीं, कोई पुरुष आए नहीं पिंगला के कक्ष में। तो पिंगला उस समय उसे साक्षात्कार हुआ कि अरे मैं इन पुरुषों से संतुष्टि चाह रही हूं जो मेरे पास आते हैं क्योंकि ये असंतुष्ट हैं। तो कौन ऐसा पुरुष है जो मुझे संतुष्ट कर सकेगा? और पिंगला कहती है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, कि इस भौतिक संसार में परम दुख क्या है? आशा। इस भौतिक संसार से आशा रखना, नैराश्यम परमम सुखम, और इस भौतिक संसार से कोई आशा न रखना, उसी में परम सुख लिखा हुआ है। और फिर पिंगला का साक्षात्कार है कि एक ही पुरुष है जो मुझे पूर्ण रूपेण संतुष्ट कर पाएंगे, वो है परम पुरुष। और उस साक्षात्कार, उस शोक के वजह से अपने वैश्यावृत्ति जीवन को दिखारते हुए पिंगला भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करती है और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करती है। तो यह शोक ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ। और यह एक उदाहरण है फिर से 11वें स्कंद में राजा पुरुरव। राजा पुरुरव जो कि उर्वशी से इतना ज्यादा प्रभावित, अब उर्वशी जो कि स्वर्गलोक की अप्सरा, ये स्वर्गलोक की अप्सराएं किसी से विवाह नहीं करती, परंतु महाराज पुरुरव ने भगवान कृष्ण की भक्ति की और भगवान श्री विष्णु से वरदान मांगा कि मुझे उर्वशी चाहिए पत्नी के रूप में। देखिए इतना ज्यादा ये उर्वशी से लोभित थे। और उर्वशी से विवाह तो हुआ, परंतु उर्वशी ने तो कह दिया था कि मैं तो स्वर्ग की अप्सरा हूं, ये सारे नियम मुझे चाहिए। उर्वशी ने नियम दिए थे, मुझे केवल घी में पका हुआ चाहिए, मेरे साथ ये जानवर रहेगा वो हर समय मेरे साथ रहेगा। तो ऐसे नियम उर्वशी ने रख दिए थे और उर्वशी जानती थी कि कभी ना कभी नियम भंग होगा, मैं फिर से अपने स्वर्गलोक। तो हुआ, और जब उर्वशी ऐसी खरी खोटी सुनाने लगी पुरुरव को, कह रहे तुम स्त्री लंपट, एक कुत्ते के समान, एक गधे के समान तुम मेरी दुलत्ती खा रहे हो, जैसे एक गधा गधी की दुलत्ती खाता है, उस प्रकार से तुम मेरी दुलत्ती खाते हुए इतने आसक्त हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और उस समय महाराज पुरुरव, उनके अंदर यह ज्ञान उजागर होता है और वो कहते हैं कि मैं ऐसे स्त्री के पीछे आसक्त था, ऐसे स्त्री के पीछे जिसका शरीर केवल मल मूत्र से बना हुआ। और बहुत गहरे साक्षात्कार हैं महाराज पुरुरव के। और महाराज पुरुरव अंततः फिर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं उस अनुभव के पश्चात। तो यहां पर इनके परिणाम से, इनके फल से हमें समझ में आता है कि किसका शोक अज्ञान के द्वारा था और किसका शोक ज्ञान के द्वारा था। जैसे कि महाराज भरत, हालांकि इतने ज्ञानी, और अजामिल की तुलना यदि महाराज भरत से की जाए तो अजामिल तो पापी और महाराज भरत इतने बड़े भक्त, परंतु अंततः उनका शोक किसके लिए था वो देखने से पता लगता है कि एक अज्ञान के रूप में और एक ज्ञान के रूप में। तो इसलिए यहां पर अर्जुन जो शोक व्यक्त कर रहे हैं, एक दृष्टिकोण से अज्ञान के द्वारा अज्ञान के द्वारा इसलिए क्योंकि वो केवल उन्हें अपना सगे संबंधी मान रहे थे और उसके वजह से उनको नहीं मारना चाहते थे। तो शरीर, तो अज्ञान की तुलना भी उसकी कर सकते हैं, और क्योंकि वो पाप से बचना चाह रहे हैं अर्थात वो अपने शरीर से ज्यादा अपने आत्मा की सुरक्षा के विषय में सोच रहे हैं, तो ये शोक एक प्रकार से मिश्रण है ज्ञान और अज्ञान दोनों का। इसलिए क्षेमतरम जो वो शब्द कह दिया अर्जुन ने, उसके द्वारा अब भगवान गीता सुनाना प्रारंभ करने वाले हैं। तो अंत में यदि ये पूछा जाए कि ये जो पहला अध्याय है, इससे हमने क्या सीखा, कितने श्लोक, 46, इन 46 श्लोकों में हमने क्या सीखा इस प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या, अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्याय। सबसे पहले हमने ये सीखा मन हमें कभी भी धोखा दे सकता है। कैसे सीखे आप ये, मन हमें कभी भी धोखा दे सकता है। प्रथम अध्याय से कौन सी घटना से ये सीख मिल रही है हमें, भीष्म और द्रोण के सामने अर्जुन जब आए तो क्या हुआ, हाँ शंख बज चुके हैं और सब कुछ निर्धारित है, तब मन उनका बोला क्या कर रहे हो। तो ये मन देखिए, जब सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है किसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य को सिद्ध करने की, उस समय मन फिर जाता है हमारा। इसलिए अर्जुन के मन के द्वारा ये पहले अध्याय में देखिए 64 करोड़ योद्धा कितनी तैयारी हुई होगी। हम यहां पे एक हरे कृष्ण उत्सव कर रहे हैं 1000 लोगों के लिए, और उसके लिए इतनी हमको तैयारी करनी पड़ती है, उनको कहां कैसे खिलाएंगे, कहां से कौन सा लाइन बनाएंगे, कहां पे सर्विंग होगा। सोचिए 64 करोड़ योद्धाओं के लिए अकोमोडेशन, उनका प्रसादम, कुकिंग, सर्विंग, 64 करोड़ योद्धाओं के लिए, वो भी योद्धा वहां पे ऐसे कोई कीर्तन करने नहीं आ रहे वो लोग कि सबको बोला चलो दुर्योधन लाइन में खड़े हो जाओ उधर कर्ण के पीछे, तो खड़ा हो जाएगा दुर्योधन, वो छतरी अपने ऊपर नहीं रखता है, वो क्या खड़ा होगा। तो ऐसे योद्धाओं को मैनेज करना इतनी कितना बड़ा मैनेजमेंट रहा होगा। वो सब मैनेजमेंट होने के बाद जो मेन जो योद्धा जो मेन परफॉर्मर बोल रहे हैं, नहीं कुछ नहीं करूंगा, तो अब सोचिए कितना टेंशन आएगा मैनेजमेंट के लोगों को, मैनेजर्स को क्या टेंशन आया होगा, उनको हार्ट अटैक आ जाता था जिन्होंने पूरा युद्ध मैनेज किया। और सबसे बड़े मैनेजर तो भगवान ना, भगवान ही तो पूरा ये सब मैनेज कर रहे थे, सब उन्हीं की करनी थी। और यहां पर अर्जुन का मन देखिए, तो ये मन है ना, ये बालक के समान होता है। बालक, अभी मैं अपने विवेक प्रभु मुझे बता रहे थे कि अपना ऐसा ही एक प्रोग्राम के बाद उनका जो परीक्षित छोटा सा, वो प्रसाद के लिए बैठा उनके अपने पिताजी के साथ, और अपने पिताजी को बोलता है मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेके आओ वो लेके आओ, पूरी फिस्ट भर ली प्लेट पे। और ये विवेक प्रभु का प्रसाद हो गया था, वो पूरी भरने के बाद फिर उठ के चला गया, खाओ अभी नहीं खाना मुझे, मुझे इतना मंगाया क्यों, बस मन मौजी। तो ये मन भी हमारा ऐसा होता है, ये देखा मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अभी मुझे ये सेलफोन चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये बंगला, ये सब चाहिए, सब मिलने के बाद मन नहीं लग रहा, तो थप्पड़ मार के मन ही तुम्हारे लिए तो इतना सब कुछ लाया और तुम बोलते मन नहीं लग रहा। 20-20 साल 25-25 साल इतना काम किया तुम्हारे लिए, अब तुम बोलते मन नहीं लग रहा। ऐसे बोलना चाहिए हमको मन को, लेकिन हम अच्छा मन नहीं लग रहा, अच्छा मन नहीं लग रहा है तो बताओ फिर क्या करो, दूसरा लाओ, दूसरा प्लेट लेके आओ। तो फिर भाग दे दूसरा प्लेट लाने के लिए, और दूसरा प्लेट लाए ना तो फीस्ट बनाना पड़ेगा, तो कुकिंग करना पड़ेगा, तो सामग्री खरीदनी पड़ेगी, तो खरीदो, ये नहीं खाना मुझे, वो खाना है। ये मन है हमारा। तो ये सबसे पहले अर्जुन के मन से हमें सावधान हो जाना चाहिए। यदि अर्जुन इनका मन ऐसी परिस्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में ऐसा पलट सकता है, तो हम फिर कौन सी खेत की मूली। और दूसरी शिक्षा हम ये लेते हैं, भगवान से संबंध किसी भी स्थिति में स्थापित किया जा सकता है, चाहे हमारा मन कितना भी इधर उधर जाए। अर्जुन के रथ पर भगवान थे, अगर भगवान नहीं होते तो पता नहीं अर्जुन का क्या होता। इसलिए कहा गया है कि अर्जुन विषाद योग, अर्जुन के विषाद के वजह से अर्जुन भगवान से संजोग स्थापित किए। अर्थात हमारी भी स्थिति अर्जुन की तरह इस भौतिक संसार में अक्सर आ जाती है, तो उस समय हम भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं या फिर भौतिक संसार के किसी सूत्रों की शरण ग्रहण कर रहे हैं। तो यहां पर यह सीखने मिलता है कि कोई भी स्थिति में, चाहे विषाद में हो, भगवान से संबंध स्थापित हो सकता है। अर्जुन की तरह दूरदर्शी कैसे बना जाए। दूरदर्शी का अर्थ यह नहीं जो दूरदर्शन देखे, दूरदर्शी का अर्थ क्या है, दूर से दर्शन, या एक और शब्द है महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस जिसे बोलते हैं। कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षी या एम्बिशियस किसे कहोगे, जो आगे की सोचता है ना। जैसे कि जानवर जो होते हैं वो इतना आगे की नहीं सोचते, वो कुत्ता रोज उठ के भागता है रोटी ढूंढते हुए, और जैसे रोटी मिल गई सो जाता है फिर, और फिर सुबह उठते फिर से भूख लग गई, कल इतना खाया था फिर से भूख लगी। तो वो ऐसा नहीं कि फ्रिज में रोटी भर भर के रख रहा है अगले दिन के लिए भी, वो लोग हर दिन के लिए बस उनकी नई चिंता होती है। एक दृष्टिकोण से अच्छा है वो जीवन भी। तो मनुष्य आगे के 20 साल की चिंता कर अभी से यहां पे इन्वेस्टमेंट, वहां पे इन्वेस्टमेंट, बच्चा पैदा हुआ नहीं उसके लिए पॉलिसी खोल ली, फिर छोटे से बच्चे हाथ में खिलौने के बदले आजकल पॉलिसी लेके घूमते हैं। 25 साल बाद मेरे पिताजी मेरे लिए ये फ्लैट लेके खरीदे हैं। अर्थात ये हमें बुद्धि मिली है, इसलिए हम 20 साल 25 साल। यहां पे देखिए अर्जुन, इनकी दूरदृष्टि देखिए, ये क्या क्या सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं यहां पे मैं इनको मारूंगा तो इनके कुल का नाश होगा, कुल का नाश होगा, कुल धर्म का नाश होगा, कुल धर्म का नाश होगा, स्त्रियां प्रदूषित होंगी, वर्ण संकर, फिर नारकीय जीवन, पिंड क्रिया नहीं होगी, पिंड क्रिया नहीं होगी तो जो पितृ हैं वो पछताएंगे, जो पूर्वज वो पछताएंगे, आगे वाले पछताएंगे, पीछे वाले पछताएंगे, साइड वाले सब पछताएंगे। अर्थात अर्जुन उनके विषय में सोच रहे हैं जो उस रणभूमि पर उपस्थित भी नहीं है और पैदा भी नहीं हुए अभी तक। सोचिए इतनी दूरदृष्टि। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि हमारे साधना भक्ति में हमारी दूरदृष्टि कितनी होनी चाहिए। केवल यह नहीं कि आज का माला हो गया, आज का हो गया ना, ये साल की जन्माष्टमी मना ली, ये साल का कार्तिक महीना मना लिया, बस हमारी कई बार दृष्टि उतनी सी रह जाती है। दूर दृष्टि हम साधना भक्ति में कैसे अर्जुन से सीख सकते हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि अभी मैं जो गलती करूंगा उसका परिणाम कहां तक पहुंचने वाला है, अर्थात हमारी साधना भक्ति में हम अर्जुन से पहले अध्याय से क्या सीखते हैं कि यदि मैं अपनी साधना भक्ति में कुछ गलती करता हूं जाने अनजाने में, तो उसका परिणाम कितना भयावह आगे हो सकता है। अर्थात यदि मैं भगवत धाम नहीं गया तो फिर से मुझे जन्म लेना होगा और फिर से बुढ़ापा, बीमारी, ये सब कुछ चालू हो जाएगा। तो दूर दृष्टि कैसे हम बनाएं, दूरदर्शी कैसे बने, ये पहले अध्याय से हम अर्जुन के उदाहरण से सीखते हैं। और अंतिम शिक्षा अर्जुन से ये हम सीख रहे हैं, जब तक हम अर्जुन की तरह दयालु, निरासक्त एवं कोमल हृदय के नहीं बनेंगे, तब तक भगवत गीता समझने के हम योग्य नहीं, अर्थात दूसरा अध्याय शुरू नहीं होगा। जब तक कि अर्जुन की तरह, ये बहुत ही विशेष अर्जुन के गुण पहले अध्याय में हम देख रहे हैं, दयालु, सब कुछ दे रहे हैं वो दुर्योधन को ऐसे ही, और निरासक्त कि मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ दुर्योधन को मिल जाए ठीक है, और ऐसा कोमल हृदय कि दुर्योधन जैसे पापी राक्षसी को देखकर भी इनका हृदय पिघल रहा है। सोचिए, अर्थात हमारी साधना भक्ति में हमारी प्रगति इसमें नहीं दिखती कि हम जो हमसे अच्छा व्यवहार करता है हम कितने अच्छे हैं उससे। हमारी साधना भक्ति में हमारी प्रगति दिखती है जब हमसे कोई दुर्व्यवहार करता है तो हमारा हृदय उसके प्रति कैसा है, तब जाकर दूसरा अध्याय भगवान सुनाते हैं। जब तक हमारे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, और हम ये सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया तो मैं भी इसी के साथ ऐसा ही करूंगा, तब जाकर मैं एक अर्जुन जैसा योद्धा क्षत्रिय कहलाऊंगा। नहीं, यहां पर अर्जुन के कोमल हृदय, अर्जुन के दयालु भाव और अर्जुन के निरासक्ति को देखते हुए भगवान ने दूसरा अध्याय प्रारंभ किया, श्री भगवान उवाच। और फिर भगवान ने आगे बोल भी दिया, अर्जुन क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं रखे किसी के प्रति, क्योंकि तुम्हारा ऐसा दयालु भाव, तुम्हारा हृदय इतना कोमल, इसलिए गीता का ज्ञान अर्जुन समझ सके। तो यदि हम गीता का ज्ञान नहीं समझ पा रहे तो ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम हो रहा है। इतना समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों नहीं समझ रहे। और गीता को समझने का अर्थ क्या है, करिष्ये वचनम तव, उसे कहते हैं विनम्रता, जो भगवान चाहे वो हमारे जीवन में हम करें। तो इसके साथ प्रथम अध्याय की समाप्ति पर आप सबको बधाई हो, सर्टिफिकेट की पहला अध्याय हमारा सुखपूर्वक हो सकता है आपको याद हो जो भी हमने चर्चा की, नहीं तो फिर से शुरू करें पहला अध्याय, अगली बार दूसरा अध्याय शुरू करें कि फिर से पहला शुरू करें, सब योग्य बन गए दूसरे अध्याय के लिए। हालांकि हमारी स्थिति है कि हम जब सुनेंगे तो योग्य बनेंगे, परंतु फिर भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने एक एक श्लोक लेकर, एक एक श्लोक लेकर पहले अध्याय को इस प्रकार से उसको अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग दृष्टिकोण से, शास्त्रों के अंदर देखते हुए प्रथम अध्याय को समझा इस प्रकार से। और यदि आप लोगों का आशीर्वाद हो, भगवान और गुरु परंपरा का आशीर्वाद हो, तो हम हमारे अगले बुधवार के कार्यक्रम से, जब भी होगा, क्योंकि हमारे कई भक्त आज कौन कौन यात्रा के लिए जा रहे हैं, यहां पे आए हैं कोई तो यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो बहुत से हमारे भक्त यात्रा के लिए आज निकल रहे हैं, और अगले बुधवार को मैं नहीं रहूंगा, तो इसलिए हमारा दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा दिवाली के पश्चात, हाँ 28 तारीख को, 28 तारीख को हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को दीपावली की शुभकामनाएं। कि आजकल कलयुग में बोलना पड़ता है कि हैप्पी एंड सेफ दिवाली, आजकल वो सेफ वर्ड भी लगाना पड़ता है कि सुरक्षित क्षेमतर। परंतु क्योंकि भगवान श्री दामोदर ने उस दिन दामोदर लीला की दिवाली के दिन, इसलिए क्षेमतरम, आत्मीय स्तर पर हम सुरक्षित हैं। तो आप लोगों को शुभकामनाएं दिवाली की और नूतन वर्ष। और हम यही अभिलाषा रखते हैं कि जैसे कि प्रभु श्री राम का स्वागत हुआ दीपों की आवली से, इसलिए इसका नाम है दीपावली, दीपों की आवली से प्रभु श्री राम का स्वागत हुआ अयोध्या में, और भगवान श्री दामोदर ने जो लीला की उस दिन, तो उस दिन से हमारा जो अंधकार अंदर है वो भी इन दीपों के द्वारा मिट जाए, और प्रभु श्री दामोदर इनकी कृपा से जो हमारे हृदय का मंथन होकर जो कृष्ण प्रेम रूपी माखन है उसे वो चुराएं, यही हमारी अभिलाषा और प्रार्थना होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक विशेष आपको सूचना हम देना चाहते हैं।